हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 41 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। कृपया मेरे साथ साथ शब्दावली उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। शब्दों का अर्थ देखिए। तस्मात्, तस्मात् का मतलब होता है अतः यानी इसलिए। इसलिए तो किस लिए? क्योंकि काम रूपी शत्रु ने आपके इंद्रियों मन और बुद्धि पर आक्रमण कर लिया है, तो क्या करो? इसलिए त्वम यानी तुम इंद्रियाण आदव, इंद्रियाण यानी इंद्रियों को, आदव मनी प्रारंभ में, प्रारंभ में इंद्रियों को क्या करो? नियम्य भरतर्षभ। नियम्य मतलब इंद्रियों को खत्म मत करो, इंद्रियों को मारो मत, इंद्रियों को नियमित करो। भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ। और उसके बाद क्या करो? पापमानम। पापमानम मतलब पाप के महान प्रतीक, क्योंकि अपराध जो है वो होता किससे है? इंद्रियों से होता है। और क्योंकि इंद्रियों में काम वासना ने डेरा जमा लिया है, तो नियम करो, नियमित करो। और इस पापमान के, पापमानम प्रजहि येनम, प्रजहि का मतलब होता है दमन करो। किसको दमन करो? ही एनम। ही एनम का मतलब होता है आप इंद्रियों को नियमित करो। इस तरह से पाप के महान प्रतीक, एनम मतलब काम, क्योंकि काम की बात चल रही है ना, अभी काम ने ही सारा ये आवृत कर दिया है, तो इस काम को एनम। और ये क्या है? ज्ञान विज्ञान नाशनम। एक तो अपराध, पाप मानम का मतलब होता है कि ये बहुत आपको अपराध कराने वाला, पाप का महान प्रतीक है, क्योंकि जब काम आपकी इंद्रियों पर और आपके मन पर और बुद्धि पर आक्रमण कर देगा तो आपसे बहुत ज्यादा अपराध करवाएगा। और प्रजयी, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करो। और ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये क्योंकि आपका बहुत बड़ा शत्रु है, तो ज्ञान तथा शुद्धि, ज्ञान का क्या मतलब होता है यानी ज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान को। एक तो ये भौतिक ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो, और वैज्ञानिक शुद्ध आत्मा का जो वैज्ञानिक यानी जो उसने प्रैक्टिकल जो भी वैज्ञानिक तौर से सीखा है और जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सब नाश कर, नाशम का मतलब होता है संहर्ता यानी विनाश करने वाला है। तो ये काम जब हम पर आक्रमण कर देता है तो हमसे बड़े बड़े अपराध करवा सकता है प्लस हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर सकता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने इंद्रियों को नियमित करके इस काम पर विजय पाओ। अनुवाद देखिए, इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस अत्यंत ही आध्यात्मिक और अद्भुत श्लोक को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साद्विजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपति गोपेक्ष गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा श्लोक नंबर 36 में कि हमसे अपराध करवाता कौन है, इच्छा नहीं होती है फिर भी हम अपराध कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भगवान ने कहा कि ये केवल काम ही है जो आपसे अपराध करवाता है। और उसके बाद भगवान ने कहा कि ये जो काम है वो अलग अलग स्तर से आपकी बुद्धि को आपके ज्ञान को ढक देता है और इस तरह से क्योंकि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनम नित्य वेलनम, तो ज्ञानी का नित्य वेरी है और ये रहता किधर है, तो भगवान ने कहा 40 में इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहयतेश ज्ञानम आवृत्य रहिना, कि इंद्रियों मन और बुद्धि के अंदर ये काम आखी घुस के बिड़ जाता है और देहदारी यानी जीव आत्मा की पवित्र चेतना को ढक देता है। तो अब क्योंकि अब सिचुएशन ये है, जब काम उत्पन्न हो जाता है तो तीनों को काबू में कर देता है, तीनों फंस जाते हैं, इंद्रियां मन और बुद्धि। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं कि समझो एक बहुत बड़ा राजा है और उस राजा वो पूरा राज पहले करता है और पूरा जो राजा का जो मंत्री है ना उसने क्या किया है, शत्रु के साथ मित्रता कर ली है। राजा का मंत्री शत्रु के हाथों बिक गया है, उसके साथ मित्रता कर दी। अब मंत्री चला गया राजा के हाथ से, ठीक है। उसके बाद आता है सेनापति, तो सेनापति है ना वो भी बिक गया, ठीक है, क्योंकि मंत्री ने सेनापति को भी खरीद किया कि आ तुम भी मेरे पास आ जाओ। और सेनापति क्योंकि सारी सेना को कंट्रोलर, सेना का कंट्रोलर है, इसलिए सारी सेना को भी अपने वश में कर दिया और सेना जो है वो भी राजा के राजा का विद्रोह कर रही। अब राजा इतना परेशान है कि वो क्या करे, क्योंकि मंत्री जो था उसको भी है ना शत्रु ने खरीद लिया और उसके बाद सेनापति भी उनके वश में चला गया और सैनिक जो थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो अब राजा को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री तो उसकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि मंत्री बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर होता है और जो सेनापति है उसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर डायरेक्ट से सेना को सेना के ऊपर सेनापति के ऊपर आक्रमण करेगा तो सेनापति क्योंकि सैनिक सारे उसके वंश में है तो क्या करेगा, वो राजा को ही हरा देगा। तो राजा अक्लमंद राजा को क्या करना है, सबसे पहले जो सैनिक है ना उनको अपने कंट्रोल में करना है। अब सारे सैनिक क्योंकि सेनापति एक होता है लेकिन वो कंट्रोलर होता है सैनिकों का, लेकिन होता एक है, लेकिन जब सारे सैनिक अगर कंट्रोल में आ जाए तो उनको कंट्रोल करना आसान भी है। जैसे अभी उनको कंट्रोल करना इसलिए आसान है क्योंकि वो उनके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है ना, वो आराम से आपके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो दिखते हैं आपके कंट्रोल में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो जब सैनिक सारे उसके कंट्रोल में आ गए फिर उन सैनिकों के बल पर राजा सेनापति को कंट्रोल करेगा और सेनापति कंट्रोल हो जाएगा तो क्योंकि अब सैनिक और सेनापति दोनों राजा के पास आ गए तो मंत्री कैसे उसकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि उसको माननी पड़ेगी क्योंकि राजा के पास पावर आ गया। तो फिर राजा सबसे पहले क्या करेगा, सैनिक को कंट्रोल करेगा। इस तरह से शास्त्र कहता है कि स्थूल चीज जो है ना सबसे ज्यादा स्थूल चीज है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है और उसके बाद जो सूक्ष्म चीज है उसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड है। तो स्थूल में क्या है, अब क्योंकि आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि, यानी बुद्धि बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उसके बाद मन है, उसके बाद इंद्रियां, यानी इंद्रियां जो है वो स्थूल है। अब मन को आप रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते ना ही बुद्धि को, लेकिन इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज आपके हाथ में है आप वही करोगे ना। तो इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं तस्मात्म इंद्रियां यादव, सबसे पहले सैनिकों को, ये जो सैनिक है हमारी इंद्रियां 10 इंद्रियां अपने पास, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां, और मन यदि कोई कार्य कर रहा है तो जब तक उसको इंद्रियों का सहयोग नहीं मिलता तब तक नहीं कर सकता। हालांकि मन इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो इंद्रियों की सहायता के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जैसे समझो एक बंदूक है ना, बंदूक तो खतरनाक नहीं होती है ना, यानी कि बंदूक रखी होगी, बंदूक समझते हैं पिस्टल, वो इतनी खतरनाक नहीं होती है जब तक कि उसके अंदर बुलेट नहीं होता है, गोली नहीं होती है ना, लेकिन गोली खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को लग गई तो उसके जिस्म के आर पार हो सकती है। बंदूक अगर किसी को लगेगी, समझो बंदूक अगर किसी को मारोगे तो जख्मी हो सकता है, मरेगा तो नहीं ना बंदूक से, लेकिन यदि किसी को गोली लग जाएगी तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। लेकिन गोली जो है वो बगैर बंदूक के कुछ नहीं कर सकती। अभी आप बंदूक के बगैर अगर किसी को गोली मारोगे, उसको लगेगा ही नहीं। तो गोली को अपना कार्य करने के लिए बंदूक की सहायता चाहिए। उसी तरह से मन जो है वो गोली की तरह है और इंद्रियां जो है वो पिस्टल की तरह है। तो मन बगैर इंद्रियों के कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ठीक है। इंद्रियों को आप इजाजत नहीं देते हो। इंद्रियां सूक्ष्म है, मन का दिल कर रहा है, समझो मन कर रहा है कि आप ये काम वासना को पूरा करो, समझो। खाली सिंपल से अगर हम कोई खाने की चीज को सोचते हैं कि मन का दिल कर रहा है, मन कर रहा है कि वो बाहर जाए और बाहर से ना समझो चाट खाए कहीं से, या फिर जलेबी खाए जाकर रेडी पे खड़े होकर, लेकिन इंद्रियों की सहायता नहीं मिल रही उसको, तो मन भले जिधर जाता है जाए, जलेबी खानी है खाए, चाट खानी है खाए, पानी पूरी खानी है खाए, उधर से घूम फिर के दुखी होके वापस इंद्रियों के पास आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों ने तो उसकी सहायता की नहीं, तो फिर मन की मांगे पूरी हुई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर भगवान बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बता रहे हैं मन को कंट्रोल करने का। अब मन तो काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर बुद्धि इन दोनों के कारण जो है वो खुद ही क्या करेगी, तो उसके पास कुछ हथियार उसका रहा नहीं ना। मन और इंद्रियां दोनों ही काम वासना की आवरण से ऊपर आ गई, तो बुद्धि क्या करे बेचारी, उनका साथ वो कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे भगवान कहते हैं तस्मातम इंद्रिया व्याधव नियम या भरत शब्द, या भगवान ने बहुत अच्छा ना शब्द उच्चारण किया, नियम या मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कब आदव, आदव मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ में तो कब, श्री गोपाल जी कहते हैं, शास्त्र कहता है जितना जल्दी हो सके, यानी बचपन से। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञो, अगर आपके अंदर बुद्धि है, अगर आप अक्लमंद हो तो बचपन से ही, कौमार आचरे प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है वो बचपन से ही काम वासना को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर नहीं होता है तो फिर मतलब बचपन में आप क्या शास्त्र अध्ययन करोगे, क्या समझोगे, लेकिन तो फिर कब करो। श्री प्रभुपाद जी कहते एज सून एज वन रियलाइज द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, यानी कि जैसे आपको अर्जेंसी का मतलब होता है क्या, तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको नियमित करनी है अपने इंद्रियों को। तो यह प्रश्न उठता है कि इंद्रियां करती क्या है, जिसको हम कौन से इंद्रियों के ऐसे कार्य हैं जिसको हम नियमित करें, क्योंकि इंद्रियां काम वासना के कारण बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई हैं, और इतना ज्यादा उत्तेजित इतना, और भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पापमानम, ये आपसे बहुत अपराध करवाएंगी। व्यक्ति के अंदर जब काम वासना आक्रमण कर देता है तो उससे बहुत अपराध करवाता है, मतलब सोच नहीं सकते कि वो कितना अपराध कर सकता है। क्यों करता है, क्योंकि भगवान बताते ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि आपका जो ज्ञान है और जो विज्ञान है वो सब नष्ट हो जाता है, और काम वासना के कारण आप उसका पतन हो जाता है। जैसे आजकल तो ये इतना घृणित समाज हो गया है, एक एड्स नाम की बीमारी है जो कि काम वासना के कारण होती है। इसमें क्या होता है, शरीर पूरा मनुष्य का सड़ जाता है, और इसमें तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेस होती है, वो भी उसके करीब नहीं आते, क्योंकि वो इनको ऐसा लगता है कि ये मर्ज जो है वो हमको ना लग जाए। और ये जो बीमारी है ज्यादातर यंगस्टर्स को लगती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत काम वासना करते हैं इसलिए। और पाश्चात्य देश में आजकल हमारे सारे जो यंगस्टर्स जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर यह है नहीं, बात ही नहीं बताया जाती कि ये अपराध है। इवन आप कहीं होटल में जाते हो तो आपसे पहले बताते हैं कि टिक करते हैं, भाई आपको कैसा रूम चाहिए, उसमें एसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और है ना टीवी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एलसीडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और सारी चीजें बताते हैं। उसमें लिखा होता है स्त्री आपको मांगती है नहीं, मतलब वहां पर आपको एक स्त्री चाहिए होती है। मतलब इतना दूषित वातावरण है कि कुछ भी अपराध ही नहीं लगता, अपराध करने वाले को लगता ही नहीं है कि ये अपराध है। इसलिए भगवान प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता एकदम ऑनेस्ट शास्त्र है, इसमें हर चीज बहुत ऑनेस्टली भगवान ने बताई है, क्योंकि अब जो है समाज में उसको बताएंगे नहीं, उसको क्लियर नहीं करेंगे तो समाज जो है वो अधोगति से बचेगा कैसे। इसलिए भगवान ने कहा तस्मातम इंद्रियाणि यादो, इंद्रियों को सबसे पहले नियंत्रित करो। वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रित करने से काम वासना पूरा का पूरा समाप्त नहीं होगा, है ना, क्योंकि मन भी है बुद्धि भी है, ये सब काम वासना से जकड़े हुए हैं। ये इंद्रियों को नियमित करने से बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट युद्ध तो शुरू होगा। वरना क्योंकि आप काम वासना आपका सबसे बड़ा वैरी है, भगवान ने कहा विद्येनम यह वैरिणम, तो वैरी को दुश्मन को खुला परमिशन कैसे दे सकते हो कि आ जाओ जहां दिल करता है आक्रमण करो, इंद्रियों पर करो, मन पर करो, बुद्धि पर करो। आपको उसे रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, भगवान बताते आप सेकंड लाइन में, पापमानम प्रजहियेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये तो आपके ज्ञान को आपके विज्ञान को इतना नाश कर देगा कि आपसे इतना पाप हो जाएगा। पाप का महान प्रतीक है ये काम, तो इसको जीतने के लिए एटलीस्ट युद्ध स्टार्ट करना है, और वो युद्ध स्टार्ट होता है इंद्रियों से, है ना। तो भगवान कहते हैं तस्मातम इंद्रियाणि यादव, कि युद्ध स्टार्ट करो। अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर तो वरना तो ये शत्रु तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर कुएं में नीचे गिर गया है, ठीक है, कुएं में नीचे गिर गया है तो उसको ऊपर आने के लिए अगर कोई रस्सी दे रहा है तो रस्सी को पकड़ेगा, लेकिन यदि उस कुएं के नीचे भी किसी चीज को उसने पकड़ा हुआ है, यानी कि नीचे से भी किसी ने पकड़ा हुआ, तो रस्सी खींचने वाले कितना भी प्रयत्न करेंगे क्योंकि वो नीचे से भी उसने किसी चीज को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो फिर वो ऊपर नहीं आएगा, है ना। सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जिस चीज को उसने नीचे पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब उसको छोड़ेगा तभी वो खींचे जाने पर ऊपर आएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, इस कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य यही है कि आपकी इंद्रियों को नियमित करके आपको काम के आक्रमण से बचाया जाए, क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो समाप्त नहीं हो सकती हैं। आपके हृदय में जो काम है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको नियमित किया जा सकता है, है ना। क्योंकि अब बताओ कोई जीव खाना खाए बगैर रहेगा क्या, खाना कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण भावनामृत में क्या बताया जाता है, खाओ लेकिन पहले भगवान को खिलाओ, उसको प्रसाद बनाओ, उसके बाद खाओ। जीव कभी भी है ना बोलना बंद नहीं कर सकता, जब तक जिएगा तब तक बोलता रहेगा, लेकिन कुत्तों की तरह भौंके नहीं, ऐसे क्राउ उसको बोलते हैं, कौवे बोलते हैं, कौवे लोग है ना, जो वो ऐसे बोलते रहते फिजूल बात। लेकिन कृष्ण भावनामृत क्या बोलता है, बोलना है तो बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, एक साथ दो दो घंटे तीन तीन घंटे बोलो, लेकिन कृष्ण कथा बोलो। अब श्रवण करना कान का धर्म है, वो कान जो है वो श्रवण करना नहीं छोड़ सकता, तो निंदा श्रवण करने की बजाय आपको क्या श्रवण करना है, भगवान के पवित्र कथाओं का श्रवण करना है। तो इस तरह से एक सारी जो इंद्रियां हैं, जैसे देखना जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकती हैं, तो भगवान के दर्शन कराओ उसको। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों में भी अगर बोला जाए कि चलो ठीक है इंद्रियों को वश में करना है, लेकिन उनमें सबसे पहले क्या किसको वश करना है, वश में करना है, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि वाचो वेगम, सबसे पहले आपकी जिह्वा जो जबान है ना उसको कंट्रोल करना है, वो जो बोल रही है उसको कंट्रोल करना और जो खा रही है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये जुबान जो है वो वन टू इन वन है, वो कर्म इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय भी है तो छोटी सी लेकिन ये बहुत बड़ा पतन कराती है। तो सबसे पहले इंद्रिय में भी अगर किसी को कंट्रोल करना है तो इसको सबसे पहले भगवान का प्रसाद खिलाने की आदत कराओ ना, जब वो भगवान का प्रसाद खाएगी और बोलने के लिए भी उसको भगवान के पवित्र नाम को बुलवाओ, खाली भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो इस पवित्र नाम के जप से और भगवान के पवित्र प्रसाद के बल से क्या होता है, बात ये इतना बड़ा काम कर देंगी कि फिर आगे की दूसरी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही आसानी से नियमित हो जाती हैं। तो अगर कोई पूछे कि ठीक है आपकी सारी जगहों पर मन में बुद्धि में और है ना इंद्रियों में शत्रु आके घुस गया है, तो शत्रु को निकालना कहाँ से शुरू करेंगे, उसको खुदेड़ना मन से नहीं, मन तो हमारे बस में है ही नहीं, क्योंकि अगर मन हमारे बस में होता तो फिर हम इस संसार में ना होते, हमारा मन हमारे बस में नहीं था तभी हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। फिर बुद्धि से, बुद्धि तो बहुत ऊपर है, उसको तो कंट्रोल करना बहुत कठिन है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को वश में करेंगे उनको भगवान के यानी कि इंद्रियों को वश में नियमित क्या करना है कि उनको डाइवर्ट करना है, उनको किसी भी चीज से नहीं रोको, कान को भगवान की कथा सुनाओ, आंखों को भगवान के दर्शन कराओ और त्वचा को भगवान की भक्तों के चरण को स्पर्श करवाओ और जिह्वा को भगवान का प्रसाद खिलाओ और भगवान के पवित्र नाम का जप कराओ, इस तरह से इंद्रियों को नियमित कराओ, फिर काम जो है वो कभी भी आपको जीत नहीं सकता। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है, ज्ञान विज्ञान नाशनम सब कुछ नाश करने वाला है। तो सबसे पहले इस पापी शत्रु को जीतने के लिए इंद्रियों को बस में करना, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा आत्म तथा अनात्म के भेद को का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। अब यहाँ पर लिखा ना ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो ज्ञान क्या है कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, तो जब इंद्रियों पर या फिर हमारे ऊपर काम का आक्रमण होता है तो सबसे पहले ये ज्ञान ही भूल जाते हैं, क्योंकि आसक्ति या वासना जो है वो इंद्रियों की तृप्ति की होती है और जब जीव भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, तभी वो उस वासना को पूरा करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब उसको याद रहता जब तक तब तक वो है ना वासना को पूरा नहीं करता, तब तक समझाता, ज्ञान जब तक होता है तब तक हम समझाते हैं कि नहीं आप हम शरीर नहीं है, हम शरीर की तृप्ति के लिए यात्रा कैसे कर सकते, लेकिन जैसे ही काम का आक्रमण हुआ ज्ञान नष्ट हो गया। और यहाँ पर श्री गोपाल जी आगे बताते विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध को विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है, यानी कि विज्ञान क्या का मतलब होता है, पहले आपको पता चला आप आत्मा हो, लेकिन आत्मा हो जाओ वो सिर्फ ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीवरे स्वरूप है कृष्ण अनित्य दास, तो ये स्वाभाविक स्थिति भी आप भूल जाते हो, विज्ञान भी नाश हो जाता है और भगवान के साथ आपका संबंध क्या है वो सब विनष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है श्रीमद् भागवतम में पॉइंट वन पॉइंट थर्टी वन में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणी गदितम मया। मतलब आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। सरहस्यम तदंगम, ये बहुत गुह्य भी है और बहुत ज्यादा रहस्यमय है। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। यानी आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते जब तक भगवान हमें नहीं बताते। भगवान जब हमें हम पर कृपा करते हैं तो कब कृपा करते हैं? भगवान बता देते हैं 10.10 में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। मैं आपको तब बुद्धि योग देता हूँ जब आप कंटिन्यूअस मेरे नाम का जप करते हो। यानी जब इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। आगे बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही हैं। अब भगवद गीता में हमें सब कुछ आत्मा का ज्ञान और विज्ञान पता चलता है और सबसे बड़ा हमें हमारा ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसका कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। यह चेतना कृष्ण भावना में कहलाती है। बस डाइवर्ट हो जाए ना मन, यदि कॉन्शियसनेस जो कि ये याद कराती है हमें कि हम ये शरीर हैं, हम इसी शरीर को तृप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो इस सोच को इस कॉन्शियसनेस को चेंज करना है किसमें कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान की सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, यही कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है जिससे वो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होकर तदनुसार कर्म कर सके। शुरू से ही हमें इसके लिए प्रयत्न करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक है, क्या कर सकते हैं? काम जो है वो वास्तव में ईश्वर प्रेम है। अगर हमारे अंदर ईश्वर प्रेम नहीं होगा तो फिर हम कभी अपने जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आके वो ईश्वर प्रेम विकृत हो गया है और उसका प्रतिबिंब है, तो वो क्या हो जाता है? वासना हो जाती है। तो भगवान से तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते प्रत्येक जीव के लिए वो स्वाभाविक है, उसको वो नेचुरली उसके आपके अंदर है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ में ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाती है तो प्राकृत कृष्ण प्रेम काम रूप में विकृत नहीं होगा। शुरू से ही उसको अगर आप बताओ कि आप भगवान के दास हो, भगवान से प्रेम करना आपका जीवन का लक्ष्य है, तो फिर ये विकृत नहीं होगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्सहाय हो जाता है। एक बार यदि काम में प्रेरित हो जाता है वो प्रेम, तो फिर उसको वापस से काम को प्रेम में ट्रांसफर करना, चेंज करना बहुत ज्यादा बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखमय स्थिति में होता है, ऐसा दुख दुस्साध्य होता है, बहुत कठिन होता है ऐसा। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। लेकिन वैसे तो ये बहुत दुस्साध्य है, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। काम बन जाए और आप अपने प्रयत्न से उसको वापस प्रेम नहीं बना सकते, लेकिन कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सेवा इतनी ज्यादा विधि विधानों का पालन करना बहुत ज्यादा सरल है और सरल होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली क्या? अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे और भगवान की कथाओं का श्रवण करोगे तो इतना, और भगवान के प्रसाद का सेवन करोगे तो इतना शक्तिशाली है कि विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेम जो काम जो है वो फौरन से ईश्वर प्रेम बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। जैसे ही समझ में आ जाए कि आप इंद्रियां नहीं हो, आप है ना आत्मा हो, तो फिर इंद्रियों को खुश करना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है बल्कि भगवान को खुश करना है, तो आपको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। और केवल ये ज्ञान हो जाना काफी नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, ये काफी नहीं है। भगवान को घर में बिठाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान को प्रसाद अर्पित करो, भगवान को है ना श्रृंगार कराओ, भगवान को फूलों की माला बना के पहनाओ, भगवान की सेवा करो, ये है वास्तव में अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम सिद्धि है, मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और ये कैसे होता है? तस्मात् इंद्रियाणि आदो, सबसे पहले इंद्रियों को नियम या भरतर शबा नियमित करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, वो भगवत प्रेम यानी कि वो इंद्रियों के जरिए हम भगवान की सेवा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मन और बुद्धि कंट्रोल हो जाएंगे और ये भगवान हमें कल समझाएंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।